स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग सफर कल्याण में निमित्तभूत तीर्थंकर पद को पाने में जो सहायक 16 कारण भावनाएं हैं उन पर निरंतर विचार कर रहे हैं। आज हम 16 कारण भावनाओं को यहां पर विराम देंगे। एक भावना शेष रह जाएगी, वो 10 लक्षण पर्व के बाद कहेंगे। आज 16 कारण भावनाओं में से मार्ग प्रभावना, इस पर अपन विचार करते हैं। प्रवचन वत्सलत्व, यह भावना शेष रहेगी। सोचा तो मैंने ये था कि 16 पूरी हो जाएंगे, पर एक दिन बीच में गड़बड़ा गया, इसलिए उसको 10 लक्षण पर्व के बाद करेंगे। कोई सफर कल्याण की भावना से जब सम्यक दर्शन के साथ या दृष्टि की निर्मलता के साथ दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं का चिंतन करता है, तब उसे तीर्थंकर के जैसे पद को दिलाने वाली तीर्थंकर प्रकृति का संचय होता है। इतनी विशुद्धि केवली भगवान के पादमूल में ही संभव है, इसलिए ये 16 कारण भावनाएं किसी केवली भगवान के पादमूल में ही होनी चाहिए। पर हम लोग को तीर्थंकर का सानिध्य नहीं है प्राप्त, फिर भी हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रखकर इन भावनाओं का चिंतन तो कर ही सकते हैं। इसी उद्देश्य से इसी दृष्टि से हमने इन्हें समझने की कोशिश की है, जिससे जीवन शुद्ध बुद्ध और श्रेष्ठ बने, ऐसे रास्ते को ही सन्मार्ग कहते हैं और ऐसे मार्ग सन्मार्ग की प्रशंसा या महिमा प्रकट करना ये मार्ग प्रधावना कहलाता है। हमारा जीवन श्रेष्ठ बने हम ऐसे मार्ग पर चले, ऐसे मार्ग पर चलने के लिए एक तो स्वतः का पूर्व जीवन का पुण्य चाहिए और वर्तमान में पुरुषार्थ भी चाहिए, वो दो तरह से संभव है। या तो हम किसी को सन्मार्ग पर चलते हुए देखकर उससे प्रेरणा ले सकते हैं, और या फिर खोटे मार्ग पर चलने वालों की दुर्दशा देख करके हम उससे भी अपने जीवन में सच्चे मार्ग को अंगीकार कर सकते हैं। सन्मार्ग को स्वयं अंगीकार करना ही वास्तव में मार्ग प्रभावना है। सन्मार्ग की महिमा या प्रशंसा अपने जीवन में उस सन्मार्ग को प्राप्त करने से ही होगी। अकेले कोई ये सोचे कि मैं तो उन मार्ग पर चलूं और सिर्फ ढोल धमाका लेकर के और सन्मार्ग के प्रशंसा में निकल पड़ूं तो मेरे द्वारा मार्ग की प्रभावना हो जाएगी, ऐसा कभी हुआ नहीं, आगे भी इसकी कोई संभावना नहीं है। मार्ग की प्रभावना तो उस मार्ग पर चलने वाले के आचरण को देख करके ही होती है। इसलिए पहला मार्ग प्रभावना का उपाय यही है कि हम स्वयं उस मार्ग पर चलें जो सच्चा मार्ग है, या जो सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं उनसे अपने जीवन में प्रेरणा लें और हमेशा उनकी ही प्रशंसा और महिमा का बखान करें। बहुत आसान काम नहीं है भैया, स्वयं सन्मार्ग पर चलना जितना कठिन है उतना ही कठिन सन्मार्ग पर चलने वाले की प्रशंसा करना है। सन्मार्ग पर स्वयं चलने वाला भी दूसरे सन्मार्ग पर चलने वाले की प्रशंसा करे ये भी बहुत मुश्किल है। ईर्ष्या तो कर लेगा, प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए तीर्थंकर सब नहीं बनते, विरला ही कोई जीव तीर्थंकर बनता है। हम अपने जीवन को सन्मार्ग में लगाएं, ना लगा पाए तो जो सन्मार्ग पर लगे हैं उनके जीवन से प्रेरणा लें और उनकी प्रशंसा और महिमा का बखान करें। इतना तो कर ही सकते हैं, ये भावना हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण तभी बनेंगे। सन 1987 की बात है, नैनागिर में ठंड के दिनों में आचार्य महाराज संघ सहित विराजते थे। उसी अवसर पर पहली बार आरिकाओं को दीक्षा प्राप्त हुई। नैनागिर में गजरत हुआ था जिसके कई संस्मरण अपने आप में विरले ही हैं, धर्म प्रभावना के, मार्ग प्रभावना के, और साथ में किसी को सन्मार्ग पर चलते देखकर उससे प्रेरणा भी ली जा सकती है, इसके भी उदाहरण है। आचार्य महाराज के जीवन को ही ले ले, मुझे याद है कि गजरत से पहले भीषण ठंड के दिनों में जनवरी में, और आचार्य महाराज ने हम लोगों को कभी भी ठंड में उपवास करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि ठंड के दिनों में उपवास करना गर्मी के दिनों के उपवास से भी ज्यादा कठिन है। अगर सहन शक्ति ना हो तो जीवन खतरे में पड़ता है। लेकिन आचार्य महाराज ने उस भीषण ठंड के समय में एक उपवास धारण किया। हम लोग 10 दफे यहां वहां से घूम फिर के उनके चरणों में पहुंच जाते थे, कैसा है, इतनी ठंड है और उसमें भी कोई आधार ना हो शरीर के पोषण का तो बहुत कठिन। सुधा की वेदना बहुत तीव्र होती ठंड के दिनों में। अब आचार्य महाराज तो प्रसन्न चित्त हैं और एक उपवास आसानी से हो गया। अब उठेंगे आहार के लिए, हम लोगों ने सोचा दूसरे दिन। तो जब आचार्य महाराज के पास पहुंचे तो बोले चलो उठो शुद्धि के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि और आप, तो बोलते नहीं मैं तो नहीं उठूंगा आज, तो दूसरा उपवास भी करेंगे। हाँ सोचता हूं, इतना बोल के चुप। समझ गए हम लोग अब क्या करें, आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं कि अब आजर्षी को क्या कह सकते हैं, दूसरा उपवास भी कर रहे हैं। तो फौरन जो है समय सागर जी महाराज आचार्य के पास पहुंचे कि मैं भी आज उपवास कर रहा हूं। तो आचार्य हंसने लगे, बोलते देखा सीखी कर रहे क्या। तो हम लोगों ने कहा कि जब आप कर सकते हैं तो हमारा भी साहस करने का हो गया। तो समय सागर जी और योग सागर जी महाराज ने, बड़े महाराज हैं, उन दोनों जन को उपवास मिल गया। अब हम सब लोग चुपचाप आहार के लिए उठे। दिन भर उपवास करने वाले महाराजों की और आचार्य महाराज की सेवा परिचर्या का अवसर लेते रहे। अब तीसरा दिन जब हुआ तो सब उठेंगे ऐसा सोच करके फिर आचार्य के चरणों में पहुंचे तो बोले उठो आहार के लिए। अरे उठो मतलब आप नहीं उठ रही हैं? बोलते मैं सोच रहा हूं कि आज एक और कर लूं। पहली बार उस समय तेला किया था आचार्य ने, जैसा आचार्य महाराज ने बताया हम लोगों को कि मैंने ठंड के दिनों में तेला पहली बार सोचा है। तो जैसे ही आचार्य ने कहा कि मैं तीसरा भी उपवास कर रहा हूं, तो मैंने कहा मेरा भी आज उपवास करने का मन है। तो बोले नहीं नहीं तुम्हारा नहीं होगा, तुमसे नहीं बनेगा। तो मैंने कहा जब आप तीसरा कर सकते तो इस वाली सड़े शरीर से एक तो कर ही सकते अपन। तो हंसने लगे, दे दिया। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आचार्य महाराज के तीसरे उपवास के बावजूद भी वे सारे दिन इस बात की चिंता करते रहे कहां बैठा है वो, उसका कैसा है, ठीक है। शाम को जब मैं उनके पास बैठा हूं कि मैं सेवा करूं पैर दबाऊं तो इनकार कर दिया। बाकी सब महाराजों से कहा कि देखो तुम्हारे अंदर तो सामर्थ्य है एक नहीं दो करने की, सो तुमने कर लिया तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिसके भीतर सामर्थ्य नहीं होते हुए भी किया है पैर दबाओ सेवा करो और स्वयं भी बैठ करके और सबसे जो है परस्पर एक दूसरे की सेवा का कार्य कराया। ये क्या चीज है, ये सन्मार्ग पर चलते हुए अपने आचरण से दूसरे को भी प्रेरणा देने का काम है, उत्साह जागृत करने का काम। लोग तो बुरी बातों का अनुसरण करते हैं, भैया ये भलाई के अपने जीवन के अच्छा बनाने के कार्यों का अनुसरण करने की प्रेरणा हमें इससे लेनी चाहिए। अपन तो ये कहते हैं कोई कुछ गलत करे तो अपन उसको कहें भैया तुमने, और उनने भी तो करो, तुझे तो कुछ नहीं कही, अब बताओ। और कोई अच्छा करने वाले कार्य के लिए कहा कि उन्होंने किया था अच्छा कार्य, आपको भी करना चाहिए। हाँ ठीक है, उनकी अपनी सामर्थ्य है वो करें, हमारी तो नहीं। बुरा करने में सामर्थ है, अच्छा करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। ये पुरुषार्थहीनता है। इस पुरुषार्थहीनता को तोड़ना चाहिए और स्वयं सन्मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक होना चाहिए। और उत्साह कैसे आएगा? दूसरे को सन्मार्ग पर चलते देख करके हमें उत्साहित होना चाहिए और स्वयं सन्मार्ग पर चलने के लिए तत्पर होना चाहिए। और दूसरी चीज कि गलत रास्ते पर चलते देखकर, उनको पतित होते देखकर, उससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। कितने तो उदाहरण हैं गलत रास्ते पर चलने वाले, अत्यंत विद्वान प्रति नारायण रावण जिनका पतन ही हुआ, नारद और पर्वत राजा वसु से न्याय मांगने गए थे और राजा वसु ने झूठ का समर्थन किया था, तब पर्वत के साथ और वे स्वयं भी अधोगति को प्राप्त हुए। प्रथमानि योग भरा पड़ा है उन मार्ग पर चलने वालों के पतन की कथाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने जीवन में भी जब जब हम दुर्भावना से ग्रसित होते हैं, कैसे हमारा मन कलुषित होता है और कैसे हमारा पतन होता है, ये भी हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तब हम इस बात का विचार करके और सन्मार्ग पर लगे, उन मार्ग को छोड़ें। अब सन्मार्ग पर किस तरह से लगा जाए, सन्मार्ग क्या है, ये तो प्रेरणा हमें सन्मार्ग की मिल गई। तो आचार्य भगवंत कहते कि जिससे जीवन कर्मों से मुक्त हो वही सन्मार्ग है, जिससे आत्मा निर्मल हो वही सन्मार्ग है। इसलिए आत्मा की निर्मलता का अनुष्ठान करना यही सन्मार्ग की प्रभावना है। आत्मा प्रभावनीया रत्नत्र तेजसाम सततम एव, आत्मा को निर्मल बनाना, आत्मा की महिमा या आत्मा की जिसमें प्रशंसा है वो कौन सी चीज है, वो रत्नत्र का तेज है, जिसके माध्यम से अपने आत्मा की महिमा को स्वयं प्रकट करना, जिससे कि दूसरे को भी अपने आत्म विकास का मार्ग मिल जाए। विज्जा रह मारूड़ो मनोरा पहे सुहन बिजो चेदा सो जिन नान पहावी सम्मा दिट्ठी मुने तब। मार्ग प्रभावना करने वाला तो वही है वास्तव में जो विद्या के रथ पर आरूढ़ होकर अर्थात आत्म ज्ञान को प्राप्त करके इंद्रिय और मन रूपी घोड़ों की बलगाओं को हाथ में लेकर के और इस शरीर रूपी रथ में सवार होकर के और अपने मोक्ष मार्ग पर चलता है, वो व्यक्ति वास्तव में स्वयं अपने जीवन को प्रकाशित करता है और सन्मार्ग को भी प्रकाशित करता है। अपन लोग बाह्य क्रियाओं में धर्म की प्रभावना मानने के आदि हो गए, अंतरंग में धर्म धारण करने से प्रभावना होती है, ये बात अब थोड़े बहुत लोगों में दिखाई पड़ती है। भाई अपने अंतरंग में जब तक धर्म नहीं आएगा तब तक धर्म का प्रकाश बाहर हो नहीं सकता। जो होता है वो क्षणिक है, जनरंजन है मात्र। आज जितनी भी उत्सव प्रियता है
वो सब जल रंजन है, उससे निरंजन बनने का उपाय नहीं होता। निरंजन बनने के लिए तो आत्मा की कलुषता धोने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जप तप का सोना साबुन और साथ में संतोष का जल जब होगा तब जाकर के निर्मलता आएगी। जैसे कपड़े धोने के लिए सोना साबुन और जल चाहिए, ऐसे इस मलिनता को धोने के लिए भी जप तप का सोना साबुन और संतोष का जल चाहिए, तब जाकर के मलिनता हटेगी। है हमारे जीवन में जप तप और संतोष, नहीं है, नहीं है तो लाना चाहिए। किससे पूछ रहे हैं हम? स्वयं अपने जीवन में झांक कर देखें कि ये चीजें जो मेरे जीवन को निर्मल बनाने वाली हैं, जिससे मेरी आत्मा प्रकाशित होगी और उससे प्रेरणा ले करके और लोग भी सन्मार्ग पर लगेंगे, मुझे वो मार्ग अपनाना चाहिए, मुझे वो कार्य करना चाहिए। अपन वर्तमान में दान पूजा इत्यादि के द्वारा भी और धर्म की प्रभावना तो करना चाहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करके धर्म की प्रभावना करना चाहते, लेकिन अपने जीवन को संस्कारवान और सुसंस्कृत बनाने की पहल नहीं करते हैं। अच्छा हुआ जो आपने मेरी बात मान के इसी चतुर्मास में सही मेरी बात उतना ही मानी हुई है, नहीं तो दुनिया में कू कू की कहां मानत। आपने मान करके और कम से कम वो जो झांकियों में लाखों रुपए बर्बाद करने की प्रक्रिया थी उसको थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया है, उसकी तो प्रशंसा ही करूंगा। रही बात फूहड़ किस्म के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, वह भी आप धीरे धीरे बदल करके जिससे वीतरागता का मार्ग मिले, वो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जिससे हमारा जीवन संस्कारवान बने। संस्कार तो राग देश के पड़े हैं, अब पढ़ना चाहिए सुसंस्कार वीतरागता के, नहीं तो जीवन तो उसी में व्यतीत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करें, उसके लिए भी आपने शुरुआत तो कर दी है, उसकी भी मैं आज मार्ग प्रभावना के लिए आपकी प्रशंसा करूंगा, करता हूं, क्योंकि 100-125 लोगों ने और अभी तक नियम ले लिया, रात्रि भोजन का त्याग, सप्त व्यसन का त्याग और देव दर्शन का नियम। मार्ग प्रभावना तो इनके द्वारा होगी, हो ही गई। जब लोगों को 18 प्रांत के बच्चों को यह मालूम पड़ेगा कि हमारी सेवा में वे लोग हैं जो व्यसन मुक्त हैं, जो रात्रि भोजन नहीं करते, जो भगवान का दर्शन रोज करते हैं, तब फिर उन्हें जो प्रेरणा मिलेगी उससे और मार्ग की प्रभावना ही होने वाली है। बाकी इससे नहीं होगी कि आपने और क्या किया है, और जो किया है वो तो इसी में सहयोगी होगा, पर वास्तव में होगी प्रभावना तो इससे होगी कि सचमुच ऐसे लोग यहां पर हैं जो अपने जीवन को उज्जवल बना रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। भाई ऐसा ही अपन साहस करके, थोड़ा साहस करना पड़ता है, अवसर अपन को मिले तो चूकना नहीं चाहिए, और अवसर मिला और अपन ने उसका लाभ लेकर के अपने जीवन को संभाल लिया, वास्तव में यही मार्ग की प्रभावना है। सच्चे मार्ग पर स्वयं लग जाना, अपने जीवन को संभाल लेना, वही व्यक्ति दूसरे को भी अपने जीवन को संभालने के लिए प्रेरणा दे सकता। दीवान अरमर चंद और भामा शाह जैसे लोग क्यों प्रसिद्ध हुए हैं? और अभी अभी विशल्या का उदाहरण सुनकर के मन गदगद हो जाता है। ये हैं तपस्या करने वाले, दान देने वाले और अहिंसा को आचरण में लाने वाले लोग जिनसे प्रभावना होती। और जटायु की याद करना पड़ती है, अनीति से संघर्ष करते हुए अपने व्रतों का पालन करके मरण को भी प्राप्त हो जाना श्रेष्ठ है। ये ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। भाना शाह ने संपत्ति का संचय किया लेकिन देश की रक्षा के लिए पूरा का पूरा निक्षावर कर दिया। अपन तो ऐसा दान दे ही नहीं पाते। अपने को विचार करना चाहिए कि क्या हमारा दान वास्तव में हमारे और दूसरे के कल्याण में कारण बना, उसे मोक्ष मार्ग में लगाने में सहयोगी हुआ, उसके प्राणों की रक्षा में कारण बना, तो भी वो दान श्रेष्ठ है। तब उस दान के द्वारा मार्ग की प्रभावना होगी। आज भी भामा साह का नाम लिया जाता है। जैन कुल में पैदा होकर के उन्होंने दान की श्रेष्ठता को गौरवान्वित किया। दीवान अमरचंद जयपुर के अंदर दीवान थे। राजा के यहां पर शिकार खेलने राजा गया था, साथ में जबरदस्ती जाना पड़ा था, इसलिए नौकरी कनिष्ठ मानी गई है कि नौकरी करने वाले को मालिक की भली बुरी सब बातें माननी पड़ती हैं, अपना वहां कुछ नहीं रह जाता। तब दीवान अमरचंद साथ में थे और देखा कि हिरणों के झुंड पर राजा ने वाण चढ़ाने के लिए तत्पर हुए हैं, तो आवाज देकर के हिरणों से कहा कि ठहर जाओ, कहां भागते हो? राजा तो पीछा करते करते परेशान थे, हिरण नहीं पा रहे थे और दीवान अमरचंद की इतनी आवाज पर हिरणों का झुंड रुक गया था। ये सच घटना है। आवाज में अपने दृढ़ संकल्प की सामर्थ्य होनी चाहिए, अपने परिणामों की उज्ज्वलता निर्मलता होनी चाहिए, तब उस आवाज में कोई कार्य हो सकता है। और ठहर गए हिरण, राजा से कहा कि चलाओ बाण, जितना आपको करना हो, ये सब खड़े हुए हैं निहत्थे। आपकी बलवत्ता तो इसी में है शायद कि निहत्थे पर आप आक्रमण करें। राजा भी एक बार सोच में पड़ गया था, कहा कि ये क्या है, कौन सा मंत्र, कौन सा जादू कर दिया? उसने कहा कोई नहीं, सिर्फ अहिंसा धर्म जानता हूं मैं, और ये अहिंसा की सामर्थ्य है कि अगर मेरे जीवन में मैंने अहिंसा का पालन किया है तो उसकी सामर्थ्य आज आप देख लें। हिरणों को इतना ही कहा था कि जब रक्षक तुम्हारा भक्षक हो गया तो किसके पास जाकर के सुरक्षा ढूंढते हो, सौंप दो अपने आप को। संगी पंचेंद्री हिरण भी इस बात को समझते हैं, और अपन है अपने पास अपने वर्तमान के अहिंसक आचरण की सामर्थ्य कि ऐसा कुछ कर सके, नहीं कर पाते हैं। अपन तो धन की सामर्थ्य से कार्य करना चाहते हैं। ये ध्यान रखना, मेरे वर्षों का अनुभव है गृहस्थ जीवन का भी, और यहां की धन की कोई सामर्थ्य नहीं है जब तक कि भावनाओं की और परिणामों की निर्मलता की सामर्थ्य उसके पीछे ना हो। धन की सामर्थ्य इतनी ही है कि व्यसन में लग जावे तो जीवन का पतन कर देगा, यही है धन की सामर्थ्य। वो तो कोई विरला होगा जो परिणामों की निर्मलता वाला, जो उस धन का सदुपयोग करके उस धन से मोक्ष मार्ग की प्रभावना कर सके। इसलिए वैसे व्यक्ति से धन स्वीकार नहीं किया जाए जो कि व्यसनी हो। बहुत ही आज अपना धन आयोजनों में लगाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उससे मार्ग की प्रभावना अभी तक नहीं हुई। इतिहास में लिखा जाएगा कि इतनी भीड़ हुई थी, बस इससे ज्यादा नहीं। जीवन किसी का बदला, सुधरा कुछ नहीं, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन जीवन संभल जावे और फिर आपका दान भी सार्थक हो जावे, वही श्रेष्ठ है मार्ग प्रभावना के लिए। और जटायु ने धन से प्रभावना तो भामा शाह ने की, अपने अहिंसा के मार्ग पर चलकर के प्रभावना दीवान अमरचंद ने की। जटायु ने अनीति के प्रति युद्ध किया अपनी अंतिम सामर्थ्य तक। देशभ्रति था जटायु, व्रत ग्रहण कर लिए थे श्री राम और सीता जी के सानिध्य में। पूर्व जीवन का राजा था, जाति स्मरण हो गया था, था तो वर्तमान में गिद्ध पक्षी सर्वथा मांसाहार करने वाला, लेकिन फिर भी सबका त्याग करके अपने व्रतों का पालन करते हुए और रावण से युद्ध में भले ही विजयी नहीं हुआ, लेकिन अपने व्रतों में वो इतना सामर्थ्यवान था कि आज भी वो विजयी है। उसने अपने आप को जीत लिया और रावण को भी एक बार अपनी अनीति का स्मरण करा दिया कि अनीति कर रहे हो। विशल्या ने अपने पूर्व जीवन में जो साधना की थी उसके फलस्वरूप इस तरह की सामर्थ्य प्राप्त हुई। ये सब उदाहरण खूब लोग सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं और पढ़ते हैं पाठ गा करके बजा करके, फल पायो मैना रानी, पुण्य पाओ तो अपन ने का पाओ, अपन ने तो इतना पाओ कि 2 लाख रुपया लगाए थे और 10 बज गए। कई जनों ने तो हमें धीरे से कोई सी सलाह भी दुआई कि अगर महाराज को ऐसे आयोजन वगैरह करने हो तो पहले एक विधान कर ले, 10-20 लाख बच जाए, सो इसे सब हो जाए। मालूम आपको नहीं? मालूम, अब मालूम पड़ गया आपको, ऐसे सलाहकार भी बहुत है। पहले एक विधान रचा लो अच्छो बढ़िया 10-15 दिन को, सो में बच जे हैं, सो के बाद सब काम हो जाए जो कछु करवाने हो। देखो, विचार देखो, इससे नहीं होती मार्ग प्रभावना, इससे तो मार्ग की निंदा ही होती है। मार्ग की प्रभावना तो होगी हमारे अपने सदाचरण से, हमारे अपने जीवन के अहिंसा धर्म के पालन करने से, सच्चाई के मार्ग पर चलने से। इसलिए भैया, ये जो बाह्य में अपन प्रभावना करते हैं सो अच्छी है, कोई बात नहीं, पर उसके पीछे हमारे अपने जीवन में भी पवित्रता आवे और हमारे जीवन से आने वाली पीढ़ी को भी पवित्रता का मार्ग मिले, वास्तव में ये पुरुषार्थ और हमें करना चाहिए। तभी हम मार्ग प्रभावना नाम की 16 कारण भावना को भा करके अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। मेरी किसी बात से आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची भैया? मार्ग प्रभावना की जब बात आती है तो आज वर्तमान में जो प्रभावना के ढंग हैं उनको देख करके थोड़ा मन दुखी होता है और उस दुख को मैं इस तरह से व्यक्त कर देता हूं कि अपन ने धर्म ध्यान को भी पैसा से क्यों जोड़ दिया? शिक्षा तो कमर्शलाइज हो गई, अब तो विद्या अध्ययन भी करना है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हैं, पैसा फेंको चाहे जहां जौन सी पढ़ाई पढ़ लो भैया, लेकिन कम से कम इस क्षेत्र को तो बचा रहने दें कि धर्म धर्म तो भावनाओं से होता है। ये ना हो जावे कि धर्म तो सिर्फ धन से ही होता है, धन तो सिर्फ सहयोगी है, उससे धर्म नहीं होता। धर्म करने वाला उसकी मदद से धर्म करे तो करे, पर पहले तो धर्म करने की भावना होनी चाहिए। आज तक पैसा किसी को धर्म करने की भावना उत्पन्न कर पाया हो तो बता दो, धर्म करने की भावना उत्पन्न होने के बाद वो तो फिर त्याग करना शुरू कर देता है, अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना शुरू कर देता है, वो जुदी बात है। लेकिन आज तक धन पैसे ने प्रेरणा दी हो कि अब हम ज्यादा हो गए अब देव लोगों को, नहीं, कभी नहीं करता। वो तो कहता कि जोड़ के धरे रहो, हम जोन देना चले जैसे तुम्हारा हमारा हो जाए, कैसे हमारी से तुम्हारी सुरक्षा है, ऐसा लगता जैसे कि पैसा से हमारी सुरक्षा हुई, जो खत्म हो जाए सो हम तो बिल्कुल असुरक्षित हो जाए। जबकि अपने भले बुरे परिणामों से हम अपने जीवन में सुरक्षित और असुरक्षित होते हैं। ये बाह्य जो वैभव और धन संपदा है जिसका दिखावा हम करते हैं उससे नहीं होते, आने वाले दस लक्षण पर्व की भूमिका भी इसी मार्ग प्रभावना से बना देनी चाहिए। आचार्य महाराज का एक छोटा सा उदाहरण जो वो हमेशा दस लक्षण पर्व से पहले देते हैं, मैंने तो सन 85 में आचार्य महाराज से ये सुना था आहार जी के पंच पर्युषण के पहले, सो आपको भी ये मान के कि उन्हीं का दिया हुआ है सुनाए देता हूं कि क्या करना चाहिए पर्युषण पर्व में, जिसको अपन दस लक्षण पर्व कहते हैं, जो कि शाश्वत पर्व है, तीन शाखाओं का होता है वर्ष में। सो उसकी भूमिका के लिए अनिवार्य है कि हम सच्चे मार्ग को अंगीकार करके फिर बाह्य में व्रत उपवास इत्यादि करें तो ही हमारा जीवन और मार्ग की प्रभावना दोनों होगी। 16 कारण और 10 लक्षण एक साथ रखे, यही लगता है कि पहले अपनी भूमिका बना लो ताकि वे धर्म हमारे भीतर सहज रूप से और प्रस्फुटित हो सके। एक व्यक्ति ने और किसी के यहां जा करके और भोजन के निमंत्रण में गया था वो, तो बहुत बढ़िया उसने हलवा खाया वहां, उसको बहुत अच्छा लगा है, तो उसने सोची कि अपन भी बना है अपने घरे। सो धीरे से जब जान लगे तो उनसे पूछ ले कि जो हलवा तो बहुत अच्छा बना हुआ आपने, काटा डारो तो ये में, तो उनने सब बता दी कि जे जे चीजें डारी और हमने बढ़िया बनाओ हलवा, अच्छी बात। अब इनने भी सब सामान बुलवा करके और हलवा बनाया, केसर भी उसमें डाली, काजू किशमिश बादाम डले उसमें, मावा डला, सब बातें थी। अब वो जैसे ही खाया गया तो वो तो ऐसा लगे कि अब बाहर आया वो, अब क्या करें, उनके यहां तो खा के आए थे तो वो बहुत बढ़िया और पौष्टिक भी था और स्वादिष्ट भी था जी, अपना तो पौष्टिक तो है लेकिन स्वादिष्ट बिल्कुल नहीं है, कहां क्या गड़बड़ हो गई। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपन को धोखा दिया हो, सामान ठीक से नहीं बताया हो, जाके पूरी लिस्ट फिर से उनको बताई कि भैया तना केप में देख लियो हमने सब सामान ठीक डालो कि नहीं, उनने देखा तो सब ठीक डाला कि ले चलो हम चलते हैं तुम्हारे यहां पर, सामान और दे के लेते क्या क्या काय काय में से डाला, तो सब सामान देखा सब दुरुस्त था ठीक था। हम केसर भी डाली थी, हाँ केसर भी डाली और बहुत शुद्ध ले आए थे, आपने जो दुकान बताई थी उसे ले आए थे, तो वह डिब्बी बताओ कौन सी है, तो डिब्बी बताई तो समझ में आ गई कि बात क्या है, केसर तो बढ़िया थी लेकिन जिस डिब्बी में रखी थी उस डिब्बी में पहले हींग रखी थी, उसी में केसर रख दी थी। अब वो हींग का संस्कार तो गया नहीं और डाली तो केसर लेकिन हलवा में हींग की वजह से उबकाई आती थी कि अब तो बाहर हो जाएगी, आ गया समझ में। भैया अपन हलवा खाएंगे उसमें केसर भी डालेंगे कल से, लेकिन डिबिया संभाल लो, वो में अगर कषायों की हींग की बास आउट रहे तो फिर निभा है वह 10 दिन की खीर, आई समझ में। तो इन कषायों को तो धीरे से हटाना, इन मलिनताओं को दुर्भावनाओं को हटाना, तब जाकर के थोड़ी बहुत निर्मलता आएगी, तब ये धर्म का स्वाद आएगा, तब हमें धर्म रुचिकर मालूम पड़ेगा, तब उसको हमारे मन में धारण करने की भावना उत्पन्न होगी। थोड़ी भूमिका अपन को अपनी पहले बना देनी चाहिए निर्मलता की, वही निर्मलता मार्ग की प्रभावना में भी और हमारे जीवन के कल्याण में भी कारण बनेगी। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता दर्शन करने वाला है।
भगवान महावीर स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, आज चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस है और आचार्य महाराज की श्री कृपा से मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति का अवसर भी मिला है। आचार्य शांति सागर जी महाराज इस युग के महान आचार्य हुए हैं। उनके जैसी त्याग, तपस्या और करुणा विरले ही साधुओं में होती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म आषाढ़ कृष्णा षष्ठी को सन 1872 में हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने 84 वर्ष के जीवन काल में 57 वर्ष तक अन्न का त्याग किया था। 57 वर्ष उन्होंने अन्न आहार के रूप में ग्रहण नहीं किया। 36 वर्ष की मुनि अवस्था में, उस 36 वर्ष के मुनि जीवन के काल में 25 वर्ष 9 माह उपवास में व्यतीत हुए। 9998 उपवास उन्होंने अपने पूरे 36 वर्ष के मुनि जीवन में किए। जीवन के अंत में 36 दिन संलेखना में व्यतीत हुए और सन 1955 में 18 सितंबर को वे संलेखना पूर्वक और समाधि मरण को प्राप्त हुए। उनके अपने जीवन के सैकड़ों संस्मरण हैं। आज अगर मुनि परंपरा सुचारू रूप से सारे देश में चल रही है तो उसका श्रेय चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज को जाता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के ही शिष्य परम पूज्य आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य आचार्य शिव सागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य शिव सागर जी महाराज के शिष्य परम पूजाचारी ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज के इस वर्तमान युग में उसी परंपरा को की कीर्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज की तपस्या के बारे में सर्वविदित है कि सर्प का और सिंह का उपसर्ग होने पर भी वे अभिचल रहे। तपस्या ऐसी कि बहुत समय तक दोपहर में सामायिक के समय बैठ रहे थे। वो घटना आचार्य महाराज ने हमें सुनाई थी कि एक तरफ करुणा है, दूसरी तरफ तपस्या की कठोरता है। दोनों का समन्वय बहुत विरले ही जीवों के होता है। 12 बजे दोपहर की सामायिक में बैठने से पहले देखा तो मंदिर के ऊपर पट्टी पर किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था जिसमें से चिड़िया का छोटा सा बच्चा नीचे आकर के गिर गया। महाराज अपनी सामायिक में लीन नहीं हुए थे इसलिए सामायिक स्थगित कर दी और चुपचाप उस बच्चे को देखते हुए बैठे रहे कि कोई बिल्ली इत्यादि आकर उसे नष्ट ना कर दे। 12:30 बजे तक वे बैठे रहे। जब शावक आए तब उनको इशारा करके उसे सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। फिर अपनी सामायिक में लीन हो गए और सामायिक में लीन होने के घंटे भर बाद सर्प का उपसर्ग हुआ जो 2.5 घंटे तक उनके शरीर से लिपटा रहा, पर वे अविचल शांत भाव से ध्यानस्थ बने रहे। एक तरफ अपार करुणा, दूसरी तरफ अपने तपस्या की दृढ़ता। ऐसी महान विभूति का आज समाधि दिवस अपन सब यहाँ पर मना रहे हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लें। आचार्य शांति सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि सम्यक दर्शन तो पशु पर्याय में और नार की जीव के भी हो जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में महाव्रत तो मात्र मनुष्य पर्याय में ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए भाई भीरु नका संयम धरा, इसलिए संयम से मत डरो, संयम जरूर से धारण करो। आज का दिन हमें संयम धारण करने की प्रेरणा देता है। उनका अपना जीवन इतना संयमित और अनुशासित था कि एक बार समाज के कहने से और उन्होंने अपने चित्र खिंचवाने की
परमिशन दे दी पहले के जमाने में, आज के जैसे जल्दी से फोटो तो खिंचता नहीं था, बड़ी सी मशीन आती थी, पर्दा ढक करके फिर उसमें से फोटोग्राफर फोटो खींचता था। उस पूरी प्रक्रिया में फोटोग्राफर के द्वारा महाराज को कई बार कहा गया कि महाराज थोड़े ऐसे बैठें, थोड़े ऐसे करें, तो चुपचाप क्योंकि वचन दे दिया था इसलिए वैसा करते रहे। लेकिन उसके बाद एक सप्ताह तक दूध का त्याग कर दिया, उस समय मात्र दूध और चावल ही लेते थे, सो उसमें से भी दूध का त्याग कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले मुझे पराधीनता का अनुभव हुआ, पर मैं वचनबद्ध था इसलिए मैं उस पराधीनता से मुक्त होने के लिए और दूध का त्याग करता हूँ, त्याग ही मेरे लिए पराधीनता से मुक्त करेगा। त्याग के प्रति उनकी कितनी अधिक सावधानी और रुचि थी, उनकी अपनी सामर्थ्य के बारे में कितनी घटनाएं हैं, कभी पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िएगा। जैसे रत्नकरंडक शाबकाचार हर शाबक को अपने घर रखना चाहिए, ऐसे ही चारित्र चक्रवर्ती पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर के द्वारा लिखी गई आचार्य शांति सागर जी महाराज की जीवनी, वह भी अवश्य अपने पास रखना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को और स्वयं भी हमें बताना चाहिए कि हम किस तपस्वी जनों के उत्तराधिकारी हैं, हमें कितनी तपस्या के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन के कल्याण के मार्ग को अंगीकार किया है और हमें प्रेरणा देके गए हैं, उनका स्मरण करना भी हमारा अपना सौभाग्य मान करके हमें करना चाहिए। उनके बारे में कहते हैं कि बहुत सारे उदाहरण हैं, फल्टन में किसी के घर में तलकचंद देवचंद गांधी थे, नाम भी है, 10 वर्ष का बालक था, सर्प ने काटा और उन्होंने ला करके महाराज के चरणों में रखा, महाराज के मुंह से निकला ठीक हो जाएगा और अगले ही क्षण इतना शब्द सुनते ही और वह जैसे सोए हुए से जागता है निर्विस होकर के उठ के खड़ा हो गया। नसलापुर में कुष्ठ रोग से ग्रसित था, महाराज ने कहा कि 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लो ठीक हो जाओगे, और वास्तव में 6 महीने के ब्रह्मचर्य व्रत के उपरांत उस वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। महाराज पर चींटी का इतना भयंकर उपसर्ग हुआ कि सारे शरीर को चींटियां चिपक गईं और जगह जगह से रक्त की धारा भी बह गई, लेकिन वे अडिग रहे, बालकवत निश्चल रहे, और सबसे बड़ी विशेषता उनकी अपनी विनय। तपस्वी को अहंकार आने में देर नहीं लगती, लेकिन तपस्या के साथ साथ विनय इतनी थी कि जब भी कोई उनकी तपस्या की प्रशंसा करता था तो कहते थे, भाई मैं तो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज में सबसे छोटा हूं, मेरा तो अंतिम नंबर है, ऐसा बड़े विनय से कहते थे। सेवा की भावना इतनी थी कि ब्रह्मचारी फतेह चंद जी थे नागपुर वाले, वो एक बार अस्वस्थ हुए तो बड़े घबराए, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सिर पे हाथ रख के कहा कि कोई सेवा नहीं करेगा तो मैं तो हूं, तुम घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। एक सामान्य से व्यक्ति के लिए भी उनके मन में इतनी करुणा, इतना विनय मोक्ष मार्ग के प्रति, और अपनी तपस्या में इतने अडिग आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन से हम प्रेरणा लें और स्वयं भी संयम तपस्या विनय और करुणा के मार्ग को अपनाएं। आचार्य महाराज की कृपा से आज ही के दिन मुझे भी रत्नत्रय को धारण करने की आज्ञा मिली। मेरी अपनी सामर्थ्य तो उतनी नहीं है जितनी कि एक महाव्रत को धारण करने वाले की होनी चाहिए, लेकिन श्री गुरु की कृपा से मैं जहाँ जिस तरह से हूँ उसको उन्हीं की कृपा मानता हूँ। मेरे अपने जीवन की उपलब्धि एक ही है कि मुझे श्री गुरु के चरणों में स्थान मिला, मैं इसके अलावा बाकी उपलब्धियों का श्रेय श्री गुरु को ही देता हूँ, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो इतना ही उपलब्धि के नाम पर है कि मेरी जगह उनके चरणों में बनी रहे, इसी के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ, और बाकी सब चीज़ें तो आती और चली जाती हैं, उनसे संसार ही बढ़ता है, लेकिन श्री गुरु के चरणों में अगर जगह बनी रही तो इस संसार से पार होने का मार्ग खुला रहेगा, इसी भावना के साथ कि मैं उनके प्रति अपने जीवन को समर्पित कर सकूं। श्रावक जनों की सद्भावनाएं और शुभकामनाएं भी मेरे इस मोक्ष मार्ग में सहयोगी हैं, ये मैं हमेशा अनुभव करता हूं। सब लोग बहुत भावना भाते हैं कि महाराज स्वस्थ रहें, और वास्तव में सबकी भावना से ही आज मुझे वो क्षण याद आ गए। सेवा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन शाहपुर वालों ने जिस तरह से मेरी सेवा की थी वो मैं भूलूंगा नहीं। सब बैठे हुए हैं, वो सब आए हैं, और आप सब भी जो सेवा की भावना रखते हैं उसके लिए भी मैं आपका उपकार मानता हूँ। आप अपना कल्याण तो करेंगे ही, मेरे मोक्ष मार्ग में भी आप सहयोगी बनते हैं, ऐसे ही सबके साधु जनों के मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनते रहें, क्योंकि श्रावक और साधु दोनों के द्वारा ही ये मोक्ष मार्ग पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। हम सब इस मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होकर और भगवान महावीर स्वामी की इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह
स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जग जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चढ़ते हो तब शांत निराकुल मानस तुम पथों का चिंतन करते हो, करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़ियां भवबंधन तर तर टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां तुम पथ पंथी गुरुवर।